नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी दूसरा थिस्सलुनीकियों नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस अध्ययन को हम आरंभ करें, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह दे धन्यवाद। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, दे धन्यवाद। अब जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। अब जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। मसीह के राह पर हम चलते रहे, किया है हमको आजाद। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका लेखक पौलुस है। तो मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे, ताकि आज का वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारे सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आज आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से अध्ययन करते हैं, सुनते और सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुने तो वचन उनके जीवनों में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, उन पर कृपा दृष्टि करें, ताकि प्रत्येक के जीवन आप में आनंदित होने पाए। इस समय फिर से हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु स्वयं आकर अपनी कलीसिया को ले जाएगा, तब विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष, ख्रिस्त विरोधी अपनी संपूर्ण शक्ति में उठेगा और अपने आप को परमेश्वर कहेगा, तब प्रभु यीशु आएगा और उसके तेज से ही वह भस्म हो जाएगा। तब हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे महाक्लेश में अधर्मी का आना, अर्थात महासताव में अधर्मी का आना। आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद, लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। यह ख्रिस्त विरोधी है, शैतान का प्रतिनिधि, पाप का पुरुष, अधर्मी जन है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। यहां पर सामर्थ्य का अर्थ है शक्ति, परंतु उसकी शक्ति का स्रोत अलौकिक होगा, वह चमत्कार दिखाएगा। मेरे विचार में वह पानी पर भी चल पाएगा और मेरे विचार में वह हवा भी रोक पाएगा। आपको स्मरण होगा कि शैतान ने आंधी चलाकर अय्यूब के पुत्र और पुत्रियों को नष्ट किया था। मुझे जब किसी के द्वारा चमत्कार करने का समाचार मिलता है तब मैं डर जाता हूँ, क्योंकि बाइबल के अनुसार अगला चमत्कारी मनुष्य वही है जो शैतान के कार्य के अनुसार झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम करेगा। मैं सदा ही भयभीत रहता हूँ कि आश्चर्य कर्म करने वाले स्वर्ग से नहीं होते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आंखें मनुष्य से हटाकर प्रभु यीशु पर लगाना है, अर्थात प्रभु यीशु पर लगाना आवश्यक है कि उसमें विश्वास के अनुरूप आचरण करें। तब हम देखते हैं चिन्ह, अर्थात प्रमाण। चिन्हों का उद्देश्य होता है समझने की प्रेरणा दें। इस पुरुष के चिन्ह उस समय के विज्ञान, राजनीति और धर्म को प्रभावित करेंगे। मुझे तो आज भी आश्चर्य होता है कि मनुष्य किसी भी दिखावे का कायल हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा, आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? मेरे विचार में इसका उत्तर है, जो किसी बात के लिए खड़े ना हो पाए वे किसी भी बात के कायल हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन पर अटल एवं दृढ़ नींव रखने वाले किसी भी प्रकार के चिन्ह से प्रभावित नहीं होते हैं। तब हम देखते हैं झूठे अद्भुत काम। झूठे अद्भुत काम देखने वालों को चकित कर देंगे। उस समय संपूर्ण विश्व में लोग पाप के इस पुरुष की प्रशंसा करेंगे। ओह, यह विश्व शासक एक महापुरुष है। देखो वह क्या क्या कर सकता है। उसके झूठे अद्भुत कामों में विश्वास करने वाले कौन होंगे? वे जो सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं, उस समय उनकी संख्या बढ़ जाएगी और इस पाप पुरुष के वे अनुयायी हो जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। मैं विश्वास करता हूं कि सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक जाएगा। यह काम कलीसिया भी कर सकती है, और मेरे विचार में जहां प्रचारक नहीं पहुंच पाते हैं वहां रेडियो प्रसारण पहुंच रहा है, परंतु सत्य को सुनकर इनकार करने वाले अवश्य वहां पर होंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:11 में हम पढ़ते हैं, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। ध्यान दीजिए, परमेश्वर संसार को झूठ पर विश्वास करने देगा। वह ऐसा क्यों करेगा? क्या यह उचित है? यह वैसा ही है जैसा उसने फिरौन के मन को कठोर करके किया था। यदि आप यह सोचते हैं कि फिरौन को इसराइल वंशियों के जाने का दुख था या परमेश्वर उसकी शुभकामनाओं में बाधक था, तो आप सर्वथा गलत हैं। परमेश्वर ने उसे परिस्थितियों के अधीन बाध्य किया कि वह अपने मन की बात प्रकट करे और उस पर अड़ा रहे। आज हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वे परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। वे सुसमाचार सुनना नहीं चाहते हैं। सुसमाचार के लिए उनके मन के द्वार बंद हैं। परमेश्वर तो कृपालु होकर अपना वचन उन तक पहुंचाता है, परंतु वे स्वीकार नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसका इनकार करते हैं, और इनकार करने के कारण परमेश्वर उन्हें भ्रम में पड़ने देगा। क्यों? क्योंकि वे सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः वे झूठ पर विश्वास करेंगे। सुसमाचार सुनाने वाली कलीसियाओं में आराधना का त्याग करने वाले आज की विभिन्न प्रथा और पंथों के लिए खुले शिकार हैं। यही कारण है कि आज विभिन्न पंथी द्वार द्वार जाकर दस्तक दे रहे हैं। वे जानते हैं कि ये डावाडोल मनुष्य रविवारीय आराधना में नहीं होंगे। वे परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रखते हैं कि आराधना में उपस्थित हों। अलग अलग प्रकार की गलत शिक्षा देने वाले जानते हैं कि वे उनके आसान शिकार हैं, क्योंकि यदि वे सत्य को ग्रहण नहीं करते तो वे अन्य कुछ भी ग्रहण कर लेंगे। मुझे वास्तव में अचंभा होता है कि कुछ बुद्धिमान मनुष्य आराधना में उपस्थित होकर सुसमाचार सुनने के बाद उसे ग्रहण नहीं करते और फिर कल्पना से परे ऊट पटांग भक्ति विधियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वे किसी ढोंगी के जाल में फंस जाते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनाता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर कहता है कि ऐसा ही है। यदि कोई सत्य में विश्वास न करे तो झूठ में अवश्य विश्वास करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। वह इस काम के लिए सबसे उत्तम विधि अपनाता है। यदि मनुष्य सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं करेगा तो वह उन्हें भ्रम में डाल देगा और वे झूठ पर विश्वास करेंगे। यह झूठ क्या है? ख्रिस्त विरोधी का झूठ है कि यीशु प्रभु नहीं है और जो वह कहता है वह है नहीं। वह मनुष्यों से कहेगा कि वे प्रभु यीशु में विश्वास न करके धार्मिक लट्टू न बने, तो यह उनकी बुद्धिमानी है। उसके पास विश्वासियों के प्रस्थान की अपनी व्याख्या होगी और वह पीछे रह जाने वालों को शुभकामनाएं प्रदान करेगा कि वे रुक गए, कि उसके साथ पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करें। मनुष्य उसकी बातों में आ जाएगा और विश्वास करने लगेगा कि यह ख्रिस्त विरोधी सहस्त्र वर्षीय राज्य की स्थापना करेगा। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि वे महाविपत्ति महाक्लेश में प्रवेश कर रहे हैं। यही झूठ है और मनुष्य इसमें विश्वास करेगा क्योंकि उसने सत्य में विश्वास नहीं किया, यीशु को उसने ग्रहण नहीं किया। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:12 में लिखा है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, सत्य का त्याग करने वालों को परमेश्वर दंड देगा। मैं पहले अनेक बार कह चुका हूं और फिर से कहता हूं कि आप परमेश्वर का यह वचन सुनकर इससे इनकार न कर दें, अर्थात प्रभु यीशु का इनकार कर दें, तो आप किसी भी प्रकार के आने वाले भ्रम के लिए खुले हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने सुसमाचार कभी नहीं सुना। यदि आप ऐसा कहें, यदि आपने प्रभु यीशु से मुंह मोड़ लिया है, तो आप भ्रम के लिए खुल चुके हैं और दंड के अधीन हैं। विश्वासी होने के नाते मैं सुसमाचार सुनाता हूं और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध और कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है। आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में। अब आप यह नहीं कह सकते कि आपने सुसमाचार नहीं सुना है। आपने अन्य कई अवसरों पर सुसमाचार सुना होगा। यदि आप प्रभु यीशु का इनकार करते हैं, तो मैं मृत्यु के निमित्त मरने की गंध हूं। यदि आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु एवं मुक्तिदाता मान लेते हैं, तो मैं आपके लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध हूं। मेरे मित्रों, यह सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं या नहीं, उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। ये आपके ऊपर है कि आप जीवन पाएं या मृत्यु पाएं। हम आगे देखेंगे प्रभु के आगमन की वास्तविकता। अब पौलुस इस पत्री की व्यवहारिकता की ओर ध्यान आकर्षित करवाता है। विश्वासी को ऐसा जीवन जीना है जो प्रकट करे कि वह मसीह के पुनः आगमन में विश्वास करता है, क्योंकि उसे आगमन से संबंधित भावी घटनाओं का ज्ञान है। प्रभु के आगमन में विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि बाहर जाकर आकाश को देखते हुए कहें, काश प्रभु यीशु आ जाए। यह धार्मिक मूर्खता है। यदि कोई प्रभु के आगमन में विश्वास करता है, तो इसका प्रमाण 3 क्षेत्रों में प्रकट होगा: वचन के प्रति उसका दृष्टिकोण, उसका आचरण और उसके कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। हम देखेंगे विश्वासी वचन में स्थिर रहें। 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। मेरे विचार में ये 2 पद उद्धार का परिपूर्ण श्रृंखला प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में उद्धार का प्रकाशन करते हैं। पहली बात हम देखते हैं, आदि से तुम्हें चुन लिया। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 28 से 31 पद में यह अति स्पष्ट है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। डॉक्टर आर एस टोरी कहा करते थे कि यह पद एक थकित हृदय के लिए कोमल तकिया है। निसंदेह यह है भी, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यही तो पौलुस यहां पर 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिख रहा है, परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया कि उद्धार पाओ। यह अतीत की ओर देखता है। मैं जो जानता हूं वह यह है कि यहां क्या लिखा है, और मैं उसमें विश्वास करता हूं। आपके कहने का अर्थ क्या है? क्या यह है कि परमेश्वर ने हमारे जन्म से पूर्व हमें चुन लिया है? चार्ल्स स्पर्जन कहते थे कि मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने मुझे मेरी उत्पत्ति से पहले चुन लिया क्योंकि यदि वह मेरे जन्म तक रुकता तो मुझे कभी नहीं चूमता। इसका अर्थ है कि आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को आश्चर्य नहीं होता है, परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो चाहे वह आए। ये चाहने वाले ही चुने हुए हैं और जो ना चाहे वे चुने हुए नहीं हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में प्रभु यीशु ने निमंत्रण दिया, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जी हाँ, यह उद्धार का वैध निमंत्रण है, निष्कपट और निश्चित निमंत्रण जिसमें कोई समस्या नहीं। यदि आप नहीं आते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पहले से चुने हुए नहीं हैं। इसका कारण है कि आप प्यासे नहीं हैं। आपके विचार में आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्यासे हैं, आपको उद्धार की आवश्यकता है, तो आप उद्धारकर्ता के पास आ जाएं। दूसरी बात हम देखते हैं, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर चुन लिया कि उद्धार पाओ। अतीत को देखने के बाद अब वर्तमान की बात आती है। आप अपने स्थान और व्यवहार दोनों में पवित्र किए गए हैं। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके आपकी स्थिति मसीह में हो जाती है। यह उद्धार का भूतकाल है, तब पवित्र होने की व्यवहारिकता आती है जो आपके जीवन आचरण से संबंधित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको अनुग्रह में बढ़ना है। तीसरी बात, सत्य की प्रतीति। इसका अर्थ है कि विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा कि उन्नति करके उसमें बढ़ता जाए। और चौथी बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यह भविष्य की बात है, कलीसिया का उठाया जाना। पहला योहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इसके साथ ही कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 27 पद में पौलुस कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मेरे मित्रों, यह भविष्य की बात है। हमारे सामने कैसा अद्भुत महिमामय भविष्य है। अतः हमने देखा है कि इन दो पदों ने उद्धार का परिपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। हमारा उद्धार किया गया था, हमारा उद्धार हो रहा है और हमारा उद्धार होगा। यह परमेश्वर का काम है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। पौलुस ने उन्हें जो सिखाया था उसी के संदर्भ में कह रहा है कि परमेश्वर का वचन ही विश्वासियों को स्थिर एवं दृढ़ करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। प्रभु यीशु हमारे मन को ढाढ़स बंधाता है और शांति प्रदान करता है। वह अपने वचन के द्वारा ऐसा करता है। जी हाँ, इससे हम प्रत्येक भले शब्द और कार्य में स्थिर रहेंगे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन प्रभु के कार्यों में ले चलता है। परमेश्वर का वचन शांति ही नहीं देता है, वह हमारा निर्माण भी करता है। अर्थात हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए स्थिरता भी प्रदान करता है कि हम किसी भी शिक्षा के भ्रम में न पड़ जाएं। हमारा मन मस्तिष्क उसमें साधा हुआ रहता है। यह हमें प्रचलित विचारों और पुस्तकों के पढ़ने से बचाता है। न ही हमें आवश्यकता पड़ती है कि परामर्श सत्रों में जाएं। हमें विश्वास में स्थिर होने की आवश्यकता है। अतः परमेश्वर का वचन आपको प्रभु के कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। अध्याय 3 में हम देखेंगे कि हमें विश्वासियों को यहाँ अपने आचरण और कर्मों में भी स्थिर रहना है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन के बिना यह कहना कि आप प्रभु के आगमन के अभिलाषी हैं, आपके स्वयं से और अन्यों से आप छल करते हैं। ऐसे तो आपका विश्वास आपके जीवन से प्रकट नहीं होता है और आपको कर्म करने की प्रेरणा भी नहीं देता है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि प्रभु आने वाला है, तो आप उसके लिए कार्य करना आरंभ कर देंगे। आप एक दिन उसे लेखा देंगे। यदि वह कल आ जाए तो हमें आज काम में लग जाना चाहिए। हमें खिड़की के बाहर झांक कर आकाश में उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा नहीं करना है, इसकी अपेक्षा कि हमें यहां उसके काम करना है। यह उसके पुनः आगमन में हमारे विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका विश्वास क्या है। क्या आप उसकी प्रतीक्षा में हैं? यदि आप प्रतीक्षा में हैं, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके वचन उन तक पहुंचा रहे हैं जो अभी तक नहीं सुने हैं या नहीं जानते हैं? मेरे मित्रों, यह बहुत ही गंभीर बात है, परंतु इसे सब लोगों तक पहुंचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं।